हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लेकिन आपने उस मौके को भी अपने हाथ से जाने दिया और जानबूझकर हमारे सामने हीरो बनने की कोशिश की, ताकि लगे कि एक आदमी आया, बेचारी अबला नारी औरतों को बचाया और हीरो बन गया। लाइक सीरियसली? और फिर वो बेचारी अबला औरतें आपके अपने दिल में जगह दे देंगी और अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगी। लेकिन आपने अच्छा ट्राई किया मिस्टर राणब, लेकिन आपने सिर्फ एक गलती कर दी। आपने जो भी ये ट्राई किया, गलत जगह ट्राई किया। आपने मेरे सामने ट्राई किया। मुझे नफ़रत है आदमियों से, मुझे नफ़रत है उनकी सोच से। आप समझ रहे हैं मेरी बात मिस्टर राणा? और अब करते हैं सीधा सीधा बिज़नेस की बात। 500 करोड़ की डील के लिए आप इस कंपनी के मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए सीधे सीधे एक बड़े से होटल में ले गए, और उसमें एक मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए आपने पूरा का पूरा फूड कोर्ट एरिया बुक कर लिया। रियली? और वो मैनेजर तो आपसे बेहद इम्प्रेस हुई होगी, और शायद इसी वजह से आप लोगों के सामने हम जब वहां आ गए तो उसने सारा ड्रामा क्रिएट किया था, ताकि वो जितना हो सके हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर सके। बट वी नो दैट रियलिटी क्या थी मिस्टर राणा। झलक ने जैसे ही इस तरीके से बातें की, अब तो आदित्य राणा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने दिल से उन लोगों की साइड ली थी। उसका इरादा उन लोगों को इम्प्रेस करने का या उनकी नज़रों में हीरो बनने का नहीं था। लेकिन झलक की बात सुनकर उसे काफ़ी तेज़ गुस्सा आ गया था। वो झलक को घूरते हुए बोल पड़ा, देखो, तुम्हें हमारी कंपनी के साथ डील करनी है या नहीं करनी है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन मैं जो बाहर से हूँ, वही अंदर से भी हूँ, और वहाँ पर मेरा इरादा तुम्हें इम्प्रेस करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ वाकई तुम लोगों की साइड ले रहा था। मुझे वाकई किसी भी औरत के साथ अगर यहाँ इस ऑफिस में ये सब हो रहा होता, या अगर किसी सड़क पर चलती किसी औरत के साथ इस तरह की बेइज्जती हो रही होती, तो मैं ज़रूर वहाँ पर उसकी साइड लेता। और मैं अंदर से क्या हूँ, बाहर से क्या हूँ, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे किस तरह की बातों को लेकर जज करती हैं। अगर आपको हमारे साथ काम करना है या नहीं करना है, तो बाहर आकर अपना फ़ैसला बता दीजिए। समझी आप? आदित्य ने एक टक में ये बात कहकर सारी बातें खत्म कर दीं और सीधा वहां से गुस्से में बाहर निकल गया। वहीं झलक ने एक नज़र आदित्य को बाहर जाते हुए देखा, उसके बाद एक बार फिर से पेपर वर्क में और अपने फ़ोन में खो गई। वहीं दादाजी अब अंदर ही अंदर थोड़ा सा बेचैन हो रहे थे, क्योंकि वो आदित्य के साथ किसी तरह की कोई डील को कैंसिल नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसके साथ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज मिलकर काम करें। इसी वजह से फटाफट से आदित्य के बाहर निकलते ही वो तुरंत झलक के पास गए और उसकी ओर देखकर बोले, बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात की पूरी समझ है कि तुम कब किसके साथ बिजनेस करना चाहोगी और किसके साथ नहीं, और आज के बाद इस इंडस्ट्रीज के सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होंगे। हम में से किसी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। लेकिन बेटा, बस एक बार अपने बूढ़े दादा की बात मान लो। वो मेरे दोस्त बलवीर का बेटा है और वो फिर भी अच्छा इंसान है। आई थिंक तुम्हें उसके साथ काम करने से मना नहीं करना चाहिए, प्लीज़ बेटा। और तुम्हारा डिसीशन जो भी होगा, मुझे मंजूर होगा। मुझे पता है कि तुम दिल से नहीं, दिमाग से काम लेती हो। ये बोलकर दादाजी तुरंत बाहर आकर खड़े हो गए थे। वहीं आदित्य का चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था, और तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन किसी और का नहीं, बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड कबीर का था। कबीर का फ़ोन आते ही उसने तुरंत अपने कान से लगा लिया। कहाँ है तू? अभी एक बिजनेस मीटिंग में हूँ, ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। वहीं कबीर सोचने लगा कि आज इसको हुआ क्या है, हमेशा तो इतने अच्छे मूड में रहते हैं, कभी इतनी जल्दी मूड खराब नहीं होता। ऐसी कौन सी मुसीबत पैदा हो गई होगी जिसने आदित्य राणा का मूड खराब कर दिया हो? ये सोचते हुए कबीर अब सब्र से आदित्य के आगे के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा था। फिलहाल थोड़ी देर बाद झलक बाहर आई और आकर सीधे आदित्य की तरफ बढ़ी। आदित्य को देखकर वो बोली, मिस्टर राणा, हम साथ में काम कर रहे हैं। ये बोलकर उसने आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया था, लेकिन उसने हाथ मिलाने से मना कर दिया और बेपरवाही से उसकी ओर मुंह मोड़कर वापस चला गया। वहीं अनामिका हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, थोड़ी देर पहले तूने उसे एटीट्यूड दिया था, तो उसका इतना एटीट्यूड दिखाना तो बनता है ना यार। वहीं फिलहाल शालिनी वहीं पड़ी रह गई थी, जो इस वक्त एक डेस्क पर चुपचाप सिर झुकाए बैठी हुई थी। अनामिका ने तुरंत ही शालिनी की टांग खींचने के लिए उसके पास जाकर बोली, मिस गुप्ता, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मिस गुप्ता, प्लीज़ हमें बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से थक्के मार मार कर निकाल दीजिए हमें। आपने अभी तक हमें अपनी कंपनी में क्यों छोड़ा हुआ है? भाई, हम तो फ्रॉड हैं, हम तो आज के यूथ हैं। कोई वीडियो बनाने के लिए आई है, कोई प्रैंक करने के लिए आया है, तुम सबको फ्रेम करने के लिए आए हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों को यहाँ फंसाने के लिए आए हैं। तो मिस गुप्ता, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं? प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए ना। अब अनामिका की बातें एक एक करके तीर की तरह शालिनी को चुभ रही थीं। वहीं अनामिका बस उसे अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि झलक तो उसे कुछ कहेगी नहीं। लेकिन अब अनामिका की बातें सुनकर उसके दिल की हिम्मत टूट गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुरंत वो बोली,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ये बोलकर वो लगातार उनसे माफी मांगने लगी थी, लेकिन अब अनामिका माँ उसकी माफी का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने झलक की ओर इशारा किया था। झलक ने गहरी नजरों से शालिनी को देखा और इशारा करके उसे उठने को कहा। शालिनी उठकर खड़ी हो गई। अभी भी उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो सिर झुकाकर खड़ी थी। तब झलक ने शालिनी को देखते हुए कहा, मिस गुप्ता, आज तक आपने हमारे दादाजी और इस कंपनी के लिए बहुत सेवा की है, बहुत मदद की है, जो काबिले तारीफ है। इसलिए अब मुझे आपकी जरूरत होगी। आज के बाद आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगी। जैसे ही झलक ने ये कहा, शालिनी तो पूरी तरह से हैरानी में डूब गई, क्योंकि वो वहाँ की मैनेजर थी और इस तरह से भला कोई मैनेजर के पोस्ट के साथ साथ पर्सनल असिस्टेंट की जॉब कैसे कर सकता है। लेकिन ये सुनते ही शालिनी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी सपने में जरूर कंपनी की मालकिन बनने का सपना देखा था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि उसका वो सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के नए वारिस मौजूद थे और वो अब इस कंपनी को संभाल भी चुके थे। तभी शालिनी ने अपने हाथ जोड़कर झलक से कहा कि वो कभी उसे निराश नहीं करेगी और हमेशा उसके साथ साए की तरह रहेगी। ये सुनकर झलक ने गहरी सांस ली। वहीं तभी आरव आगे आए और आकर झलक के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, इतना बड़ा दिन है आज, तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बनी हो, तो एक छोटी सी पार्टी तो बनती है ना। तभी झलक ने गहरी नजरों से उनके चेहरे को देखा और बोली, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको किस बात की इतनी टेंशन थी कि आपको इस तरह से स्ट्रोक आया और आपकी तबीयत खराब हो गई। जैसे ही झलक ने गहरे अंदाज में ये सवाल पूछा, आरव थोड़ा सा हड़बड़ा गए और नजरें दादाजी की ओर फेर ली। दादाजी ने तुरंत उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कहना चाह रहे हो, तेरी बेटी है, तू जवाब दे, मुझे क्यों पूछ रहा है। अब आरव बेचारगी से अनामिका की ओर देखने लगे। अनामिका तुरंत अपने पिता का साथ देते हुए उनके पास आकर खड़ी हो गई। झलक को देखते हुए बोली, झलक, हॉस्पिटल से आए इंसान से ऐसे सवाल कैसे कर सकती हो।
फिर वो रुककर आरव जी की ओर देखकर बोली, बताइए मुझे, आपको स्ट्रोक क्यों आया था, क्या सोच रहे थे आप, या फिर क्या देखा था आपने। जैसे ही आरव जी ने गहरी सांस लेते हुए ये सुना, अब तो आरव खुद को रोक नहीं पाए। अचानक उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, जब जब मैं उस नैना ओबेरॉय का चेहरा देखता हूँ, मैं खुद को संभाल नहीं पाता। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, तुम्हारे साथ किया, वो सब मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझ पर हंस रही हो, मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके, मेरी बेटी की बेइज्जती करके वो मुझ पर हंस रही हो मुझ पर। ये कहते कहते आरव पूरी तरह से भावुक हो गए थे। झलक ने आगे बढ़कर तुरंत उन्हें संभाला और गले से लगा लिया। फिर उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं कसम खाती हूँ, मैं नैना ओबेरॉय की वो हालत करूँगी कि जिस तरह आपको उसका नाम सुनकर या उसे देखकर रोना आता है, उसी तरह एक दिन आपका नाम सुनकर दुनिया कांपेगी। मैं वादा करती हूँ, नैना ओबेरॉय आपका नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगी। ये बोलकर झलक तुरंत वहाँ से बाहर निकल गई। दोस्तों, मेरा अभी आप लोगों को चैप्टर देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप लोगों को कितने मैसेज आ रहे हैं कि मुझे टाइम निकालकर एक चैप्टर एडिट करके तुरंत ही देना पड़ा। मैं बहुत आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको डेली चैप्टर नहीं दे पा रही हूँ, बट दोस्तों, मेरे घर में अभी शादी स्टार्ट हो चुकी है। शादी के स्टार्टिंग के कुछ फंक्शन हैं, उसके बाद शादी है, फिर रिसेप्शन है, तो इस नेक्स्ट 2 वीक में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं नेक्स्ट 8 से 10 दिन तक कोई चैप्टर नहीं दे पाऊँगी। सो प्लीज़ दोस्तों, समझें और सपोर्ट करें।